दो, इतिहास का उपयोग तथा दुरुपयोग, यूज एंड मिसयूज ऑफ हिस्ट्री। किसी भी विषय का उपयोग तथा दुरुपयोग उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। मानव समाज के लिए विज्ञान की उपयोगिता असंदिग्ध है। अणु शक्ति तथा न्यूक्लियर शक्ति की उपादेयता मानव समाज के लिए है, परंतु वैज्ञानिक मानव समाज के विनाश के लिए इनका प्रयोग अस्त्र शस्त्र के निर्माण हेतु करने लगे तो इसका स्वरूप उपयोगी होते हुए भी अनुपयोगी हो गया। इसी प्रकार इतिहास मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है, परंतु महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने इतिहास स्वार्थ के लिए जब इसका दुरुपयोग किया तो परंतु महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जब इसका दुरुपयोग किया तो यह विषय भी अनुपयोगी सिद्ध हो गया। इतिहास के इन दोनों पक्षों का अलग-अलग विस्तृत विश्लेषण आवश्यक प्रतीत होता है। एक, इतिहास का उपयोग। आधुनिक युग में इतिहास की उपादेयता समाज के समक्ष एक महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा तकनीकी विज्ञान की उपयोगिता असंदिग्ध है, क्योंकि इन विषयों की उपयोगिता उनकी मुखाकृति पर अंकित है। तकनीकी विज्ञान तथा चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी का अभियंता होना तथा डॉक्टर होना प्रायः निश्चित है। क्या इतिहास का अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी इतिहासकार हो सकते हैं? यह संदेहपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में क्या इतिहास का अध्ययन उपयोगी है? यह गंभीर चर्चा का विषय है। मानव जीवन में इतिहास की उपयोगिता असंदिग्ध है, क्योंकि इसे मानवीय समाज के विकास की कहानी मानते हैं। इतिहास मानव समाज में सत्य तथा न्याय की प्राप्ति के लिए संघर्ष का वर्णन है। प्रोफेसर शेख अली ने उचित ही कहा है, इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। अतः एक राष्ट्र के उत्थान तथा विकास के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। जिस प्रकार एक मानसिक चिकित्सक के लिए रोगी संबंधी अतीत का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार इतिहासकार के लिए राष्ट्र तथा समाज संबंधी अतीत का ज्ञान आवश्यक होता है। इतिहास का उद्देश्य कविता की भांति मनुष्य को विनोदपूर्ण शिक्षा देना है। यह मात्र आदर्श नहीं अपितु हेरोडोटस, लिवी, टेसिटस, गिबन तथा मैकाले की रचनाओं के अवलोकन से यथार्थ प्रतीत होता है। इतिहास एक शीशा है जो मानवीय प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। यह जीवन संबंधी सभी प्रसाधनों से युक्त एक दुकान है, जहां सभी प्रकार की बौद्धिक सामग्री उपलब्ध है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जीवनोपयोगी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानार्जन के लिए वैज्ञानिक खिड़की पर जाते हैं। पांडित्य अथवा विवेक के लिए दर्शन, सत्य तथा आदि शक्ति के ज्ञान के लिए धर्म अथवा अध्यात्म, और भौतिक वैभव शक्ति तथा अधिकार के लिए वे शुद्ध विजय, साम्राज्य विस्तार तथा शासकों की निरंकुशता तथा शोषण से संबंधित इतिहास के पृष्ठों का अवलेकन करते हैं। भीरू पुरुष आदर्श तथा शक्तिशाली भौतिकवादी विचारों का आश्रय लेता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से परिपूर्ण एक कोष है। सिसरो के अनुसार इतिहास एक अधिकार संपन्न अधिकारी है, जो सत्य एवं तर्क के आधार पर न्याय प्रदान करता है। मानव समाज निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। इसका विस्तृत विवरण इतिहास के पृष्ठों में मिलता है। इतिहास का ज्ञान यह स्पष्ट करता है कि पृष्ठ संख्या 43, मानवीय संबंधों को राजनीतिक सीमाओं से संकुचित नहीं किया जा सकता। इतिहास शिक्षा प्रद है। कुछ विद्वानों का विचार है कि विज्ञान की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए यह मानव समाज के लिए उपयोगी है। इतिहास में पुनरावृत्ति की संभावना नहीं होती, इसलिए वह शिक्षा प्रद नहीं हो सकता। निसंदेह समय, स्थान तथा व्यक्ति की पुनरावृत्ति इतिहास में संभव नहीं है। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी लुई 16वें की नीति के कारण हुई। अतः इतिहास में लुई 16वां तथा 1889 की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। परंतु यह अवधारणा तर्क संगत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति जन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। फ्रांस में 1830, 1848 ईस्वी की राज्य क्रांतियां तथा रूस में 1905 और 1917 की ईस्वी की राज्य क्रांतियां परिस्थितियों की पुनरावृत्ति की परिणाम थी। एचएल फिशर ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। इसका स्वरूप समुद्री लहर की भांति होता है। एएल राउज के अनुसार इतिहास में स्वर, गति, क्रम तथा योजना की पुनरावृत्ति होती रहती है। सामान्यीकरण के आधार पर इतिहास शिक्षाप्रद होता है। यही कारण है कि इतिहास में अशोक, अकबर, महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू का अध्ययन किया जाता है। पुनर्जागरण काल में लोगों ने प्राचीन यूनान तथा रोम के इतिहास का अध्ययन शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया था। यद्यपि इतिहास का संबंध घटना विशेष से होता है, परंतु सामान्यीकरण सिद्धांत के आधार पर यह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देवी के अनुसार अतीत पर कृपा हम न तो उसके लिए और न अतीत के लिए, बल्कि वैभवपूर्ण तथा सुरक्षित वर्तमान के लिए इस उद्देश्य से करते हैं कि वह सुंदर भविष्य के निर्माण में सहायक होगा। मानवीय मस्तिष्क को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। सर टॉमस मुनरो की यह उक्ति यथार्थ प्रतीत होती है। रेनियन ने भी लिखा है, सभी अतीत मेरा अतीत है और मैं इसका स्मरण करने अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए करता हूँ। रेनियन का उद्देश्य वर्तमान दृष्टि से अतीत का अवलोकन कर संतोष को प्राप्त करना है। इसलिए इटालियन दार्शनिक इतिहासकार कोचे ने सभी इतिहास को समसामयिक कहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने संदर्भ में अतीत का अध्ययन करता है। किसी कार्य के पहले वह अपने पूर्ववर्तियों के प्रयासों का अध्ययन करता है। कॉलिंगवुड ने इस तर्क का समर्थन किया है, अतीत में मानवीय प्रयासों को पृष्ठ संख्या 44 जानकर ही वर्तमान में कार्य किया जाता है। चंद्रमा पर मानव अवतरण अनेक प्रयासों का ही परिणाम है। अंतिम सफलता के पहले वैज्ञानिकों ने अन्य प्रयासों का भी अध्ययन किया था। बेकन ने कहा है कि इतिहास मनुष्य को विवेकपूर्ण बनाता है। एक कहावत है कि पत्थर से चोट खाने के बाद गधा पुनः उसे चोट नहीं मारता है। आरसी के एंसन ने लिखा है कि इतिहास विश्व के वर्तमान स्वरूप की पृष्ठभूमि का ज्ञान प्रदान करता है। प्रोफेसर बुशमेकर का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। उनके अनुसार इतिहास मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। चार्ल्स फर्थ के अनुसार न केवल यह ज्ञान की शाखा है जिसका अध्ययन ज्ञानार्जन के लिए किया जाए, अपितु यह मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। उन्होंने सर वॉल्टर रेले के विचार को अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत किया है। इतिहास का उद्देश्य अतीत के उदाहरणों द्वारा ऐसा विवेक प्रदान करना है जो हमारी इच्छाओं तथा कार्यों का मार्गदर्शन कर सके। कुछ लोगों का विचार है कि अतीत का उदाहरण अतीत के लिए होता है, अतः शिक्षाप्रद नहीं हो सकता। परंतु A.L. राउज ने इस मत का खंडन करते हुए कहा है कि अतीत, वर्तमान तथा भविष्य एक ही कालचक्र की विभिन्न श्रृंखलाएं हैं। जो भविष्य था आज वर्तमान है और वर्तमान कुछ समय में अतीत हो जाएगा। अलाउद्दीन खिजली ने राज सिंहासन प्राप्त करने के बाद विश्व विजय तथा सभी के लिए एक धर्म चलाने की योजना तैयार की। सभी लोगों ने उसकी इच्छा तथा योजना का अनुमोदन किया, परंतु दिल्ली के कोतवाल काजी मुगिसुद्दीन ने कहा कि यदि यूनानी सम्राट सिकंदर महान ने विश्व विजय का स्वप्न देखा था तो यथोचित था, क्योंकि उसका परामर्शदाता अरस्तु था। आपके दरबार में वैसे क्षमतावान सलाहकार का अभाव है। यही नहीं, अभी संपूर्ण भारत विजय के लिए शेष है। जहाँ तक धर्म चलाने की बात है, शासक का कार्य प्रजा के लिए सुरक्षा, भोजन, वस्त्र तथा आवास का प्रबंध करना है, धर्म चलाना नहीं है। आपको यदि शासन करना है तो धर्म चलाने के विषय में सोचने का कोई औचित्य नहीं है, शासन कार्य छोड़ना पड़ेगा। परिणामस्वरूप अलाउद्दीन खिजली ने अपनी दोनों योजनाओं का परित्याग कर दिया। उसने अतीत के उदाहरणों से शिक्षा ग्रहण की। पृष्ठ संख्या 45। इतिहास अतीत की गौरवपूर्ण देन है या मनुष्य की क्रियाओं तथा उपलब्धियों का भंडार है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्रिटिश इतिहासकार मिल ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, दर्शन, साहित्य तथा कला पर जब प्रहार किया तो यह भारतीय इतिहासकारों के लिए एक चुनौती हो गई। भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय संस्कृति के समक्ष पाश्चात्य संस्कृति को नवीन कहकर अपनी सांस्कृतिक उपादेयता को सिद्ध किया है। मानवीय समाज का इतिहास। इतिहास में मानवीय समाज का ज्ञान प्रदान करता है। इतिहास हमें मानवीय समाज का ज्ञान प्रदान करता है। समाज के स्वरूप, क्रमिक विकास, विचारधाराओं का पारंपरिक संघर्ष, मानवीय स्वभाव तथा मानव प्रगति का विवरण इतिहास में मिलता है। A.L. राउज के अनुसार समाज को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए इतिहास का ज्ञान अपरिहार्य है। इसके माध्यम से हम मानव प्रगति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिशर ने लिखा है कि इतिहास के पृष्ठों पर मानव की प्रगति अंकित है। लॉर्ड एक्टन ने भी सामाजिक दृष्टिकोण से इतिहास के अध्ययन का उपयोगिता को स्वीकार किया है। आधुनिक युग में रेल यातायात, वायुसेना तथा चंद्रमा पर अवतरण के पीछे एक इतिहास है। मनुष्य इतिहास के माध्यम से अपनी कमजोरियों को जानकर उसमें सुधार का प्रयास करता है। कॉलिंगवुड ने ठीक ही लिखा है कि यह ज्ञान का स्रोत है। राजनीति में वही सफल होता है जिसे फ्रेडरिक महान, नेपोलियन, चर्चिल तथा जवाहरलाल नेहरू के इतिहास का ज्ञान हो। समाज में यह नैतिक मूल्यों को सुरक्षित रखता है। इतिहास में नीरो, नेपोलियन, कैजर, विलियम, हिटलर तथा मुसोलिनी की निशंसता स्थायी नहीं रही। दूसरी ओर गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जीसस क्राइस्ट, पैगंबर मोहम्मद तथा महात्मा गांधी की शिक्षाएं तथा उपदेश आज भी सजीव एवं सार्थक है। लॉर्ड एक्टन ने इतिहास की उपादेयता के विषय में कहा है कि यदि अतीत अवरोध तथा भारत स्वरूप रहा है तो अतीत का ज्ञान उद्धार का निश्चित तथा सरल साधन है। सर टॉमस मुनरो के अनुसार आध्यात्मिक प्रकाशित पुस्तकों की अपेक्षा इतिहास के कुछ पृष्ठ मानवीय क्रिया को समझने में अधिक सहायक होते हैं। इतिहास ज्ञान का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने को सृष्टि के आरंभ में जीवित समझता है, क्योंकि प्रत्येक उपलब्धि की पृष्ठभूमि इतिहास में मिलती है। इतिहास के पृष्ठ संख्या 46। अभाव में समाज की कल्पना का तात्पर्य स्मृति के अभाव में मनुष्य के जीवन जैसा है। सिसरो ने भी कहा है कि जीवन के पहले की घटनाओं को न जानने का तात्पर्य सदैव एक बालक के रूप में रहना है। व्यावसायिक उपयोगिता। व्यावसायिक दृष्टिकोण से इतिहास की अपनी उपादेयता है। यह विश्वविद्यालय स्तर पर अधिक उपयोगी हो जाता है। स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद नवयुवकों को पुस्तकालय, संग्रहालय तथा संस्थाओं में सचिव के पद पर कार्य करने का अवसर मिलता है। पत्रकारिता के लिए तो इसका ज्ञान अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। विश्व के प्रख्यात पत्रकार वॉल्टर लिपमैन, D.W. ब्रोगेन, सर आर्थर ब्रायंट की ख्याति एकमात्र कारण इतिहास का ज्ञान था। प्रशासकीय सेवाओं में भी इतिहास के ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके माध्यम से प्रशासक सामाजिक तथा मानवीय समस्याओं को समझने में सक्षम होता है। परराष्ट्रीय सेवाएं। परराष्ट्र, विदेश मंत्रालय के सचिवों, उच्चाधिकारियों एवं परराष्ट्र मंत्री के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। सर लेविल हेंडरसन की पुस्तक फेल्योर ऑफ द मिशन का एक उदाहरण है। सर नेविल हेंडरसन जर्मनी में 1937 से 1939 तक ब्रिटिश राजदूत थे। उन्हें जर्मनी के इतिहास का ज्ञान नहीं था। उन्होंने जर्मनी के इतिहास की जानकारी ही इंग्लिश चैनल पार करते हुए हिटलर के मेन कैंप से की। यह उनकी महान भूल थी। फ्रेडरिक महान तथा विस्मार्क संबंधी जानकारी के अभाव में वे हिटलर का चरित्र, जर्मनी में सैनिकवाद का उदय, जर्मन जनता की युद्ध प्रियता को समझने में असमर्थ रहे, क्योंकि सैनिकवाद, युद्ध प्रियता तथा आक्रामक नीति के पीछे जर्मनी के इतिहास की परंपराएं रही हैं। हेंडरसन की विफलता का एकमात्र कारण ऐतिहासिक ज्ञान का अभाव था। सर आयर क्रो ने इतिहास की आधारभूत समस्याओं को समझने का प्रयास किया और वे अंत तक सफल रहे। जर्मनी की जनता प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणामों से दुखी नहीं थी। विजय की प्राप्ति न होना उनके दुख का कारण था। इतिहास प्रमाण है कि जर्मनी की जनता ने युद्धप्रिय शासकों को सदैव पूजा की है। राउस ने लिखा है कि पावर इज द इंड्यूसमेंट, पावर इज व्हाट दे वर्शिप। फ्रेडरिक की महानता का कारण अभियानों में निरंतर सफलता थी। बिस्मार्क का उत्कर्ष रक्त एवं युद्ध पिपासु नीति, ब्लड एंड आयरन के कारण हुआ। हिटलर का उत्थान प्रतिशोध तथा युद्ध के आवाहन पर हुआ। इन तथ्यों का ज्ञान इतिहास से होता है। ऐतिहासिक ज्ञान के अभाव के कारण अमेरिका ने 1920 में अकेले रहने की नीति को अपनाया। फलस्वरूप जर्मनी, इटली तथा जापान का उदय तथा विश्व युद्ध का विनाशकारी परिणाम हुआ। यही कारण है कि आज अमेरिका को अकेले यूरोप की सुरक्षा का भार वहन करना पड़ रहा है। पृष्ठ संख्या 47। सन 1962 में सीमा विवाद के कारण भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में चीन की विस्तारवादी नीति रही है। श्याम वर्मा नेपाल के साथ सीमा विवाद का कारण चीन की विस्तारवादी नीति थी। भारत तथा रूस के साथ सीमा विवाद का एकमात्र कारण परंपरागत विस्तारवादी नीति है। पिकिंग में तत्कालीन भारतीय राजदूत के एम पनिक्कर इन ऐतिहासिक तथ्यों को भली भांति समझ न सके। उन्होंने भारत चीन मैत्री में अटूट आस्था रखने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को स्पष्ट स्थिति से अवगत नहीं कराया। परिणामस्वरूप सीमा युद्ध में भारत की पराजय तथा चीन का हजारों वर्ग मील भारतीय भूमि पर अधिकार हो गया। इन तथ्यों को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी परराष्ट्र मंत्री को की सफलता उसके इतिहास संबंधी ज्ञान पर निर्भर करती है। भारत तथा पाकिस्तान के मैत्रीपूर्ण संबंध के परिवेश में अतीत की घटनाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन की हिटलर के साथ तुष्टीकरण की नीति एक महान भूल थी। ब्रिटेन का इतिहास इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि ब्रिटेन महासंघ ग्रैंड एलियंस द्वारा अपनी रक्षा कर सका। स्पेन के फिलिप द्वितीय, फ्रांस के सम्राट लुई चतुर्दश तथा नेपोलियन बोनापार्टा, जर्मन के कैजर विलियम द्वितीय तथा हिटलर की आक्रामक नीति से ब्रिटेन महासंघ द्वारा अपनी रक्षा कर सका। चर्चिल की सफलता का कारण उनका इतिहास का ज्ञान था। विश्व की कुछ मूलभूत समस्याओं को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान अपरिहार्य है। इतिहास की मनोरंजन उपयोगिता। इतिहास मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी के रूप में मनोविनोद का साधन है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के पूर्व इतिहास साहित्य की एक शाखा रहा है। हेरोडोटस, लिवी, टेसिटस, ह्यूम, फ्रायर तथा मैकाले की कृतियां साहित्यिक दृष्टि से इतनी रोचक है कि अधिकांश लोग मनोरंजन के लिए उनका अध्ययन करते हैं। यूनानी ऐतिहासिक साहित्य का विकास स्थानीय गीतों से ही हुआ। इस प्रकार इतिहास स्वयमेव विनोदपूर्ण है। ट्रेवेलियन ने कहा है, इतिहास मुख्यतः काव्यात्मक है। यह एक महान काव्य की भांति है जिसका न आरंभ है और न अंत। डेविड ह्यूम के अनुसार इतिहास उपन्यास से भी अधिक रोचक है। उन्होंने कहा है कि इतिहास का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति सृष्टि के प्रारंभ से अपना अस्तित्व मानता है। ट्रेवेलियन ने लिखा है कि इतिहासकार पाठक को अतीतकालीन समाज के अंतस्तल में प्रवेश कराकर विश्व भ्रमण का आनंद प्रदान करता है। मैकाले के अनुसार, मुझे तब तक संतोष नहीं होगा जब तक मेरी रचना नवीनतम रोमांटिक उपन्यासों को नवयुवतियों के टेबल से हटाकर उनका स्थान ग्रहण न कर ले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मैकाले, वॉल्टर स्कॉट, कार्लाइल तथा गिबन की ऐतिहासिक रचनाएं तत्कालीन समाज में कितनी लोकप्रिय रही होगी। पृष्ठ संख्या 48। शैक्षणिक उपयोगिता। शिक्षा की दृष्टि से भी इतिहास अत्यंत उपयोगी है। ट्रेवेलियन ने लिखा है, अवस्था के बढ़ने के साथ हम अपने पूर्व दिनों तथा दशा का स्मरण करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतिहास भावी शिक्षा का आधार है। इतिहास ज्ञान के अभाव में दूसरे द्वार बंद रहेंगे। इतिहास सामाजिक विज्ञान की आधारशिला है। यह हमारी भावनाओं तथा प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर कीटिंग के अनुसार, मानव स्वभाव जगत का यह एक परिचय है। सभी परिस्थितियों में कार्यरत नायकों का अध्ययन है। यह हमारे परिचय क्षेत्र को विकसित करता है। इतिहास से यह शिक्षा मिलती है कि अपनी रुचि के महापुरुषों की प्रशंसा एक सीमा के अंतर्गत तथा रुचि प्रतिकूल नायकों के प्रति यथोचित न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं। राउज ने उचित ही कहा है कि इतिहास की उपयोगिता संकुचित दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। यह विषय जाति और धर्म के ऊपर है, मानवीय मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। बेकन के अनुसार, पठन मनुष्य को पूर्ण तथा लेखन विवेकशील बनाता है, क्योंकि इतिहास का आधार तथ्य होता है। प्रोफेसर ब्यूरी के शब्दों में, इतिहास विज्ञान है न कम और न अधिक। बेकन ने पुनः कहा है कि कवि मनुष्य को विनोदी, गणित, चतुर, दर्शन, अध्यवसायी, नीति निपुण, तर्कशास्त्री, आत्मसंतोषी बनाता है तथा इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इतिहास सभी विषयों में एकता स्थापित करने वाला एक सारांश युक्त विषय है। हीगल के अनुसार, मनुष्य इतिहास से वह शिक्षा प्राप्त करता है जो अन्य विषयों में अप्राप्य है। इतिहास मनुष्य को परिपक्व, बुद्धिमान तथा अनुभवी बनाने वाला अत्यंत उपयोगी विषय है। अतीत की आधारशिला पर वर्तमान का निर्माण करने तथा भावी मार्गदर्शन के लिए इतिहास मनुष्य को सक्षम बनाता है। वेबर के अनुसार इतिहास अवधारणा के मूल तत्वों के विषय में प्रत्येक युग का अपना दृष्टिकोण होता है। अंत में लॉर्ड एक्टन के विचार से इतिहास की उपयोगिता का समापन करना उचित प्रतीत होता है। यदि इतिहास अवरोध तथा भारत स्वरूप है तो इसका निश्चित तथा सुरक्षित निवारण अतीत के द्वारा ही संभव है। 2. इतिहास का दुरुपयोग। कोई वस्तु स्वयमेव अनुपयोगी नहीं होती। सब कुछ मनुष्य के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। अणु शक्ति तथा न्यूक्लियर शक्ति की उपयोगिता असंदिग्ध है, परंतु जब वैज्ञानिकों ने उसका दुरुपयोग मानव समाज के विनाश के लिए किया तो उपयोगी होते हुए भी अनुपयोगी कही जाने लगी। उसी प्रकार इतिहास पृष्ठ संख्या 49 की उपयोगिता सर्वमान्य है, लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए जब इसका दुरुपयोग किया तो यह विषय भी अनुपयोगी हो गया। इसलिए हेनरी फोर्ड ने इतिहास को एक अंधेरा शयन कक्ष कहा है। यहाँ तक कि दार्शनिक हेगेल का विश्वास इतिहास की उपयोगिता में नहीं रह गया था। उसने कहा है कि इतिहास में शिक्षा के लिए कुछ भी तत्व नहीं है। एक बार नेपोलियन बोनापार्टा ने स्कूल के निरीक्षकों से इतिहास की उपयोगिता के विषय में पूछा तो सभी ने एक स्वर में कहा कि इतिहास अनुपयोगी है। भारतीय इतिहास के अध्ययन के पश्चात एक चीनी विद्वान ने KM पनिक्कर से कहा था, भारतीय इतिहास एक प्रकार से टेलीफोन की डायरेक्टरी है, क्योंकि इसमें वंशावली तथा तिथियां हैं। जब कभी फ्रेडरिक महान इतिहास पढ़ना चाहता था तो वह कहता था, ब्रिंग मी माय लेयर। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास की उपयोगिता में अधिकांश लोगों की आस्था समाप्त होती जा रही है। इस प्रकार का दृष्टिकोण निराधार नहीं है। इतिहास की अनेक घटनाएं यह प्रमाणित करती हैं कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इतिहास का दुरुपयोग किया है। यह सत्य है कि इतिहास ने अतीत के आधार पर मनुष्य के हृदय में प्रतिशोध की भावना सदैव जागृत रखी है। प्रतिशोध तथा प्रतिस्पर्धा से जब मनुष्य कार्य करता है तो वह संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र के लिए घातक हो जाता है। 19वीं सदी में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच प्रतिद्वंदिता तथा प्रतिस्पर्धा का मूल कारण इतिहास रहा है। लुई चतुर्दश नेपोलियन बोनापार्ट के समय में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्धों का कोई आकस्मिक कारण नहीं, बल्कि इतिहास अध्ययन का परिणाम था। प्रतिशोध तथा प्रतिस्पर्धा की भावना को इतिहास ने सदैव सजीव रखा। 1871 में जर्मनी के चांसलर विस्मार्क द्वारा फ्रांस की भूमि एल्सेस लोरेन पर अधिकार एक महान ऐतिहासिक भूल थी। उसे फ्रांस से इस प्रकार छीना गया जैसे दूध पीते हुए बच्चे को अपनी माँ से अलग किया जाता है। इस घटना ने फ्रांसीसियों के हृदय में प्रतिशोध की भावना जागृत की। प्रथम विश्व युद्ध की आधारशिला इस घटना ने तैयार की। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के समय जर्मनी के साथ वारसाई की संधि का उद्देश्य जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए दंडित करना था। हिटलर के उत्थान का प्रमुख कारण प्रतिशोध की भावना थी। उसने मित्र राष्ट्रों से बदला लेने की आवाज उठाई। प्रतिशोध की भावना ने जर्मनी को पुनः एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। यही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। इतिहास ने प्रतिशोध तथा प्रतिस्पर्धा की भावना को समाप्त करने की अपेक्षा सजीव रखा। इस दृष्टि से इतिहास मानव समाज के लिए घातक तथा दुरुपयोगी भी रहा है। पृष्ठ संख्या 50। अरब तथा यहूदियों के बीच स्थायी शांति के लिए इतिहास सर्वाधिक बाधक है। 1949 में अरब यहूदियों के बीच युद्ध के परिणाम स्वरूप इसराइल का एक राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। दोनों के बीच 1956 तथा 1966 के युद्धों का कारण प्रतिशोध की भावना थी। यहूदियों को इतिहास के माध्यम से पढ़ाया जाता है कि अरब उनके सबसे बड़ा शत्रु है। इतिहास इस शत्रुता की भावना को सजीव रखता है। इस प्रकार इतिहास का अध्ययन अरब तथा यहूदियों के लिए घातक तथा विनाशकारी है। ऐतिहासिक घटनाओं के अभाव में वे पारस्परिक शत्रुता को भूलकर मित्रता के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। यद्यपि आज मिस्र तथा इसराइल का संबंध मैत्रीपूर्ण है, परंतु दोनों देश ऐतिहासिक घटनाओं को नहीं भूले हैं। सब कुछ के बावजूद वे एक दूसरे के प्रति सशंकित रहते हैं। यह संभव है कि सिनाई क्षेत्र पर पुनः अधिकार करने के पश्चात इतिहास की पुनरावृत्ति हो, क्योंकि अरब तथा यहूदियों के हृदय में शत्रुता की भावना को समाप्त करना कठिन है। इतिहास इस शत्रुता की भावना को सजीव रखता है। इस प्रकार इतिहास अरब तथा यहूदी के बीच स्थायी शांति के लिए बाधक है। सर चार्ल्स ओमन ने इतिहास को विषाक्त कहा है, क्योंकि प्रायः आक्रमण के औचित्य को इतिहास के आधार पर सिद्ध किया जाता है। यह इतिहास का दुरुपयोग है। नेपोलियन तथा हिटलर ने अपने आक्रमणों के औचित्य को इतिहास के आधार पर सिद्ध किया। रोमन सम्राट ने रोमन साम्राज्य के हित में गाल तथा कार्थेजियस के दमन को उचित सिद्ध किया। चार्ल्स डिकेंस ने अपनी पुस्तक लाइफ एंड मैनर्स इन द यूनाइटेड स्टेट में अमेरिकन्स की कटु आलोचना की है। अमेरिका के लोग इस कटु आलोचना को कभी नहीं भूलेंगे। इंग्लैंड में कैथोलिक इतिहासकारों ने सुधारवादी आंदोलन को दुर्भाग्यपूर्ण तथा हेनरी अष्टम के विवाह का परिणाम स्वीकार किया है। फ्रांसीसी प्रतिक्रियावादी इतिहासकारों ने रूसो तथा विक्टर ह्यूगो को फ्रांसीसियों के कष्ट का मूल कारण माना है। राष्ट्रसंघ की स्थापना उच्च आदर्शों के लिए की गई, परंतु संकुचित राष्ट्रवाद का इतिहास इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। पोलैंड की जनता ने कैथरीन द्वितीय तथा फ्रेडरिक महान को सदैव शांति की स्थापना में बाधक समझा। 1939 में आंग्लो फ्रांसीसी संबंधों में सुधार के बावजूद फ्रांसीसी विलियम विजेता तथा जोन ऑफ आर्क के दाह को कभी नहीं भूल सके। चेकोस्लाविया, युगोस्लाविया तथा पोलैंड के अल्पसंख्यकों का विचार है कि वे सरकार द्वारा उपेक्षित हैं। विश्व इतिहास की भावना को प्रेरित करने का श्रेय खलीफा उमर, आटमन सुल्तान तथा कैजर विलियम द्वितीय को है, परंतु इससे कष्टों की अभिवृद्धि हुई है। मैंडेट प्रथा का उद्देश्य क्षेत्रीय जनता को मुक्त तथा सुख तथा सुविधा प्रदान करना था, परंतु इसका परिणाम विपरीत हुआ। पृष्ठ संख्या 51। सर चार्ल्स ओमन ने यह स्पष्ट लिखा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम सद्भावना इतिहास की वास्तविकता नहीं, अपितु एक स्वप्न रहा है। वर्सायलेस संधि के समय इटली द्वारा डालमेशिया पर अधिकार का दावा रोमन साम्राज्य के इतिहास के आधार पर किया गया था। 1917 में बुल्गेरिया के इतिहास की पुस्तकों में उन स्थानों पर अधिकार के दावे को पेश किया गया जिनका उल्लेख 10वीं सदी में था, अथवा जिन पर जार इमैनुएल ने शासक किया था। 1919 में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण राइन नदी के किनारे के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा इतिहास के आधार पर किया था। अधिकार का यह दावा शांति तथा सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, अपितु 1757 तथा 1814 में कोलोन तथा मेत्स के अधिकार के आधार पर था। इतिहास के आधार पर ही आज चीन भारत की हजारों वर्ग मील भूमि पर अधिकार का दावा पेश करता है। दोनों राष्ट्रों के बीच शांति के लिए इतिहास बाधक है। आज भारत पाकिस्तान के स्थायी शांति में इतिहास बाधक है। 1947 के बाद पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर आक्रमण, 1965 तथा 1971 में पाक भारत युद्धों के कारण प्रतिशोध तथा प्रतिस्पर्धा की भावना को समाप्त करना सरल नहीं है। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता को पाकिस्तान कभी भी भूल नहीं सकेगा, अतः दोनों राष्ट्रों के बीच स्थायी शांति में इतिहास बाधक होगा। दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध न करने का प्रयास यद्यपि ऐतिहासिक अपरिहार्यता है, फिर भी इतिहास के आधार पर अनेक कठिनाइयां भी हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि अणुशक्ति तथा न्यूक्लियर शक्ति की उपादेयता के बावजूद मानव समाज के विनाश के लिए उनका प्रयोग कर वैज्ञानिकों ने उसे अनुपयोगी बना दिया है। इसी प्रकार इतिहास की उपादेयता असंदिग्ध है, परंतु महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसका दुरुपयोग कर उसे मानव समाज के लिए अनुपयोगी बना दिया है। इसी कारण चार्ल्स ओमन ने इतिहास के विषाक्त की संज्ञा दी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्राइमरी स्कूल की इतिहास पुस्तक की रचना का अवसर मिले तो उसे इस दुर्गुण से मुक्त करने का प्रयास किया जा सकता है। हीगेल ने भी इतिहास को एक सारहीन विषय माना है। एक फ्रांसीसी विद्वान अर्नेस्ट रेनन ने लिखा है कि अपने इतिहास को गलत ग्रहण करने की अपेक्षा उसे भूल जाना ही अच्छा है, एक राष्ट्र के निर्माण के ये प्रमुख तत्व होते हैं। इतिहास का अध्ययन प्रायः राष्ट्रीयता के लिए घातक होता है। मानव समाज के कल्याण के लिए इतिहास को भुलाया जा सकता है, परंतु यह भी सत्य है कि अपने इतिहास को भूलने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। एक भविष्य निधि के रूप में इतिहास की सुरक्षा आवश्यक है। इतिहास का दुरुपयोग प्रायः स्वार्थी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने किया है। किसी भी विषय का उपयोग तथा दुरुपयोग व्यक्ति के हाथों में निहित है। कोई भी विषय स्वमेव दुरुपयोगी नहीं होता।